Ladies and gentlemen, good day and welcome to the MacPherson Limited earnings conference call hosted by Hem Securities Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I'll now hand the conference over to Mr. Prabal Maheshwari from Hem Securities Limited. Thank you, and over to you, sir.
Thank you, Danish. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining MacPherson Limited Q4 and full year-ended 31st March 2026 earnings call. Joining us on the call today from the management team are Mr. Atul Lumbre, Chairman and Managing Director, Mr. Binod Prasad, Full-Time Director and CFO, and Mr. Nilesh Kumar, Full-Time Director of MacPherson Limited. We will now commence the call with the opening thoughts from the management, post which we will open the forum for the Q&A session, where the management will be glad to respond to any queries that you may have. Before we move to the main call, I would like to read the standard disclaimer. There may be forward-looking statements about the company and its subsidiaries, which are based on the belief, opinion, and expectation of the company's management as on the date of this call. The company does not assume any obligation to update these forward-looking statements if those beliefs, opinion, expectation, or other circumstances changes. These statements are not just guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. Consequently, listeners should not place any undue reliance on such forward-looking statements. With this, I hand over the call to Mr. Atul Lumbre, Chairman and Managing Director of MacPherson Limited, to take it forward. Over to you, sir.
Thank you. Dear shareholders, we are pleased to share our business progress and financial performance for financial year 2025-2026. This year reflects the steady and focused efforts made across all areas of the organization. During this year, we have achieved a revenue of roughly 312 crore, with EBITDA margin of 39 crore and profit after tax of 25.65 crore. For a fair comparison, we have excluded one-time bulk sales of roughly 71 crore, which was done in H1 of financial year 2024-2025. On a like-to-like basis, this represents a strong year-on-year growth of roughly 67% in revenue, 103% in EBITDA, and 105% in PAT. These results reinforce our confidence in the strength of our business fundamentals and our execution. With the completion of this financial year, we mark 3 years as a listed entity. We are proud to have sustained our growth trajectory despite global uncertainties. This reflects the resilience of our business model. We would also like to thank you for keeping faith in Robotic. Trust me, this is just the start. We have a long way to go together. This demand, accordingly, we continue to invest. Sorry, I think I just misread something. We believe that the market opportunity remains strong. The key challenge lies in building capability to effectively capture and serve this demand. Accordingly, we continue to invest in strengthening our capabilities, which are enhancing our customer support experience, expanding our product portfolio, upgrading our IT systems, and improving our fulfillment infrastructure. Demand for our products remain robust. We are witnessing increased traction from corporate customers, along with encouraging repeat purchases from existing users. This growing trust in Robu reinforces our confidence in the sustainability of our growth. Our expanding product portfolio, competitive pricing, and reliable customer support continue to be key drivers. Additionally, our participation in domestic exhibitions has helped improve brand visibility and enhance more organic, cost-effective marketing. Our key business indicators, including website and app traffic, order volumes, average order value, and customer retention, continue to show positive trends. Our business is built around two strategic focus areas, which are Robu 1.0 and Robu 2.0. For those of who are new here, Robu 1.0 is our electronics distribution business, while Robu 2.0 focuses on developing our own products. Now let's talk about them one by one. Robu 1.0 is our core distribution business and it remains the backbone of our company. We are focused on delivering quality technology products at competitive pricing, supported by quick deliveries and dependable customer service. We continue to work closely with suppliers and invest in systems to improve procurement efficiency and reduce delivery timelines while steadily expanding our product portfolio to strengthen Robu as a one-stop platform. Robu 2.0 is focusing on developing our own products, particularly in drone segment. Over the past 2 years, it has gained strong momentum while increasing acceptance of our in-house solutions. These capabilities have enabled us to undertake customized development projects, including engagements with government and defense organizations. Additionally, we have launched key drone-related products under our proprietary brand, Simplify. We sincerely thank you for your continued trust and support. It inspires us to keep improving, innovating, and building a stronger and future-ready Robu. Apart from the regular updates, I would like to clarify some data mismatch in the updated presentation. So first one is total orders served in financial year 25-26 H2, that is second half of the year. In the presentation, the number is 3 lakh. This was a typo mistake. Actual number is 2,67,126. Second is total unique visitors data, which is on our website and app. So up till last year, that is financial year 24-25, we would download the data from our system, let's say for quarter one, then for quarter two, then for quarter three, and then for quarter four, and add that data up to keep an annual unique visitors on our website. This year, we have changed the methodology and downloaded data from first quarter to last quarter, that is first day of financial year to last day of financial year in one go from our systems and reflected that data in presentation. However, this has created a mismatch with quarterly data of financial year 25-26. I'll just explain how this has happened. So if you download, let's take quarter one data and it reflects that we have 1 lakh unique customers, and then you download quarter two data and it says that we have 1 lakh unique customers in quarter two. But let's say 20,000 customers which visited us in quarter one also visited us in quarter two. So they are common in both the quarters. So if you download the data for H1 in our system, it will not be 1 lakh plus 1 lakh is equal to 2 lakh. It will be 1.8 lakh. You have to reduce those 20,000 from the system will reduce those 20,000 from the overall data. So I think to avoid any confusion hereafter, what we have decided is that we will continue with the old system, that we'll download the data quarterly and just represent sum of 4 quarters as annual data. That way everything remains clean and trackable on quarter to quarter basis, also this year to last year's quarter basis. These new corrected presentation will be uploading very soon, so that any new shareholder or any new investor looking into our numbers, he will not have the same confusion while studying the old data. With this, I would like to end my presentation and move on to Hemp Securities team for Q&A session.
Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, we'll begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Kiran D from Table Tree. Please go ahead.
Hi, thank you so much for the opportunity. Many congratulations, MacFirst team, for a fantastic set of results yet again. You've outdone yourself almost every quarter, every year. I have two questions, one a clarification and one more of a strategic question. So the clarification is, in H2 25-26, the average order value was 6776 as per presentation. Now in Q3 you did 6,000, so that means Q4 is almost 7,300 rupees per order. So that's a substantial jump from, 6,000 to 7,300 almost in Q4. Could you just elaborate the reasons why we are seeing such jumps in average order value? Is it the nature of customers or is it the basket or anything else? If you could clarify, that'd be great.
Kiranji, let me just summarize what you asked. So you're saying that average order value from Q3 to Q4 of this financial year, there is a substantial jump, and you just want to know why. I mean, the basic for it, right? Hello, are you there, Kiranji?
I'm sorry, but the participant has left the queue.
Ah, okay. So I'll just answer this question. So I think in last quarter of financial year, there are a lot of B2B customers as well as B2G customers which are consuming their yearly budget, and that's why we generally see this jump in last quarter of financial year. So I think it is very normal to see this jump for us.
Thank you. Our next question comes from the line of Swaraj from Perpetual Capital Advisors. Please go ahead.
Congratulations on a good set of numbers. My question was, are you seeing any increased demand for Raspberry Pi and similar development boards due to AI-led use cases? And how is this trend shaping your product strategy?
Overall AI-related products, I would say we are seeing a jump, but it is not substantial, because if you look at AI, currently more or less it is based on things like ChatGPT, Claude Code, or some Grok similar applications which are driven in cloud. So though there is a lot of AI hype, a lot of those people are using cloud-based hardware for doing their AI thing. We may or may not see this converting to local AI. So tomorrow, because of security and all other reasons, people would like AI on the edge. That means they would like to run AI into their laptops, into their mobile, or some hardware like Raspberry Pi or similar in their boards. So this, everybody in the industry is saying that this trend to run it on the edge will grow, but nobody knows anything for sure now. And no, I don't think this will shift any strategic, this will make us to shift strategically in any direction, because we are already covering the hardware side on the edge. So we are selling NVIDIA boards, we are selling high-end RDOs, we are selling Raspberry Pi and some other boards which may come in higher demand in future. And I'm not claiming they will again. But yeah, so we really do not need to do any strategic shift.
Okay, got it. Thank you. And which product categories have been impacted by memory chip shortages? And have you been able to pass on those cost increases or benefit from any inventory gains?
So it is very, so any product which have memory, so I think mostly these development boards or drone controllers, they have all been impacted. I mean, the prices have increased because of memory shortages. And about passing the gains to customer or keeping it to ourselves, as a business, we have to be opportunistic to maximize our profits. However, we also have to keep an eye for what other people are selling it for, what international markets, how are they reacting. We have some agreements with our suppliers where we may or may not be able to increase the prices and profits. So I think it's a balancing act, and we just take the decisions at point in time. Of course, who don't want higher profits, but yeah, we have to balance it with the competition as well as the customers' expectations, as well as the suppliers' suppliers' rules and all those things.
Got it. And you mentioned new products that were launched. So what have, like, agri-drone frames and ready-to-fly FPV kits? And how has been the early market response to these newly launched proprietary products?
So we have seen market adoption. So whenever we are launching these products, our expectation is that we see some sales in the retail segment, and then we get some feedback. So we have launched our charger, drone charger, agricultural frame, drone remote very recently. Then we have some ESCs of our own. We have some video transmitter receivers of our own. So we are seeing good initial response for some products, moderate initial response for some other products. However, what the expectation is that the products will go into market, will get customer feedbacks, what's going well, what features they would like to have, the price and everything, and we'll learn along the way. So it is as per expected basis. That's it, I think, for now.
Okay, great. And you've collaborated with platforms like Raspberry Pi or Arduino to develop smart Alex products, and what specific product categories are being built under these partnerships?
So I think it's out in the public. We are already developing, I think you're talking about what we are doing with Arduino. So we are developing some educational kit from school level to the university level, according to the syllabuses that are taught in universities or schools and colleges. And that's a very normal thing. I mean, I don't want to get expectation high suddenly because this is happening, because it's very common. We have been doing this with multiple brands since we started. So I think it is a part of the business, nothing new, and we do not expect it to have a substantial impact on our revenues in short term or long term for that matter.
Okay. But so I saw one product called Raspberry Pi Neo Board. So are these in line with the existing products, or these are new products that are being built?
I think it is some misunderstanding about that product. So basically, Raspberry Pi is also a silicon company. They make RP2040 as a IC, small IC, RP2040 or 2350. So that IC we have used in our product. So basically, it's a smart Alex. As a part of Robo 2.0, we have these Smart Alex modules, which are small 300 modules in our portfolio right now. They are small products, starting from 100, 200 rupees to 2000 rupees. One of those 300 modules uses a Raspberry Pi silicon, Raspberry Pi IC. And whenever you use Raspberry Pi IC, you can name your product as Raspberry Pi 2350 development board, whatever. So it's not some association with Raspberry Pi, it's just a very normal thing. I think the board sells for about 500-600 rupees, so it's not something very substantial.
Got it. And just one last question. Smart Elect products are also being sold on product marketplaces like Amazon through players like RoboCranes. So just wanted to know your thoughts on that.
That's good to hear. We have planned it that way.
Yeah.
I mean, it's something that we're making in India, and India is a big market. Why wouldn't we like it to be sold in as many places as popular so that, sorry, as many places as possible so that it become popular and we get more traction for our products, better branding for Smart Elect. I mean, that was the whole point of calling it Smart Elect and not Robo Modules, so that we can distribute it to other people as well.
Got it. Thank you so much. I'll get back to you.
Yeah. Thank you.
Thank you. We'll take the next question from Aman Soni from Nvest Analytics Advisory LLP. Please go ahead. Mr. Soni, you may please proceed ahead with the question. Mr. Soni, you may unmute and proceed ahead with the question. As there's no response from Mr. Soni, we'll proceed ahead with a different questioner. Our next question comes from the line of Urmish Shah from Moneyweiser. Please go ahead.
Yeah. Hi, am I audible?
Yes, you're audible, sir.
Yeah. Yeah. My question is on the previous participant question only on Robo 2.0. Could you just elaborate, because you have mentioned that your long-term goals for 5 to 10 years, that is why you are aligning Robo 2.0. So what's your goal, I mean, in terms of revenue share, how much from your own proprietary product do you expect in the next 3 to 5 years? How is the order inflow and order size, if you can just quantify as a ballpark number?
Okay. So, we are not giving any revenue numbers as of now for Robo 2.0, because I think Robo 1.0 itself is a huge revenue. And
Right.
If we start putting, अगर छोटे बच्चे पे ही बहुत ज्यादा लोड देने शुरू करेंगे तो बड़ा कैसे होगा? So
Right.
right now the strategic approach for Robo 2.0 is हमारे खुद के product बनाते हैं, उनको market में हम डालते हैं और देखते हैं कि कौन से segment से हमें अच्छा response आ रहा है, कौन से product हम बना पा रहे हैं, price match करना है, quality match करना है, customer को वो requirement भी होना चाहिए. So we started, I think, roughly 2 years ago. We started with
Right.
two, three segments. One was drones, second was modules, third was sensors. So far, we have seen the best response for drone products, as I have already mentioned earlier, that the response is both from retail market. We see some traction from government side, we see some traction from military side. So it's still
Right.
finding its place. We have allocated a lot of, I'll not say a lot of, but we have allocated resources accordingly. जहाँ पे traction दिख रहा है, वहाँ पे हम थोड़ा और bullish हो रहे हैं, धीरे-धीरे।
Right.
So currently our focus area, you can say in Robo 2.0, major focus area is drone. Second is Smart Elect,
Okay.
उसको भी market से traction है। But because of the
Right.
geopolitical situation, drone को जो या drone के product को जो हमको traction दिख रहा है, वैसा Smart Elect में sudden jump नहीं है। It's steadily growing.
Right.
So this is where we are. 2 years down the line, हमारे Smart Elect के 300 modules roughly develop हो चुके हैं। ड्रोन के आई थिंक 5-10 प्रोडक्ट हमारे डेवलप हो चुके हैं. मार्केट से हमको पता है कि हम बना सकते हैं. शुरू में बहुत चैलेंजेस
Okay.
है, मोल्ड ही नहीं बन रहा है या फिर पीसीबी में कुछ इशू आ रहा है, रेंज में कुछ इशू आ रहा है. तो अभी वो स्टेबलाइज होते हुए दिख रहा है कि या हाँ, बना सकते हैं. मार्केट में भी ट्रैक्शन रिस्पॉन्स दिख रहा है. रेवेन्यू वाइज हम इंटरनली उसको रेवेन्यू टारगेट रोबू से अलाइन करके नहीं ले रहे अभी, बिकॉज
Okay.
फॉर्चुनेटली फॉर अस, आई मीन आई एम वेरी हैप्पी, नथिंग टू कंप्लेन, कि रोबो 1.0 भी बहुत फास्ट बढ़ रहा है. तो उसको कैचअप करने के लिए हमने 2014 में कंपनी चालू की थी. अभी 2026 आ गया, तो 12 साल लगे रोबो को यहां तक आने के लिए. और अगर हम वो रोबो 2.0 को पुश करेंगे परसेंटेज रेवेन्यू प्रोपोर्शन में, तो वो उसका तो दम घुट जाएगा. आई मीन इट विल बी रियली
Because you have mentioned it on your slide कि next 5 to 10 years में आपका long term goal है, that's why I asked कि
No, I'm not, I mean, you should ask. I mean, we will like कि जब हमको ज्यादा प्यार है रोबोट टू वर्ड वाले प्रोडक्ट की, बिकॉज वो अपना प्रोडक्ट है, खुद बना रहे हैं, मेक इन इंडिया है. तो वी ऑलवेज लाइक टू टॉक मोर अबाउट इट. हाउ एवर, मैं आई मीन वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस कि दिस इज खुद के प्रोडक्ट बनाना, उनको पॉपुलर करना, दैट इज अ टोटली डिफरेंट डायनामिक्स, दैट इज अ टोटली डिफरेंट इफ यू से बिजनेस काइंड ऑफ थिंग. वी आर डूइंग दैट बिकॉज इन लॉन्ग रन हम 5 to 10 years देखते हैं कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस इवेंचुअली वो स्केल होता रहेगा तो देर विल बी मार्जिन का प्रेशर आएगा, देर विल बी कॉम्पिटिशन विच विल बी इंक्रीजिंग. सो रोबो 2.0 में जो भी प्रोडक्ट है दैट विल गिव अस कुशन, वो सब्सटेंशियल रेवेन्यू होगा तो विल बी वेरी हैप्पी विद इट. आई मीन व्हाई वुडंट वी वांट इट, इसलिए तो हम उस पर भी कर रहे हैं इन्वेस्ट इतना. सब्सटेंशियल रेवेन्यू नहीं भी हुआ अगर रोबो का एक छोटा सा कंपोनेंट भी रहा तो उसमें हम मार्जिन बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, हम मार्केट बेटर कंट्रोल कर पाएंगे खुद के प्रोडक्ट के. डेटा तो रोबो 1.0 के पास यही है कि क्या चलता है कैसे चलता है. तो दैट इज द होल फिलोसॉफी एंड वी आर हैप्पी एट द पॉइंट वेयर वी आर कि हम प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, कस्टमर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है. इसीलिए तो जो स्मार्ट लिस्ट का बोल रहे थे कि अमेजोन पे भी बिक रहा है, किसी और स्टोर में बिक रहा है.
राइट.
आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. रेवेन्यू साइड हम उसको उसके रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर ट्रैक भी कर रहे हैं और पुश भी कर रहे हैं. बट जो इन्वेस्टर्स का एक देखने का नजरिया है कि हाँ भाई ओवरऑल रेवेन्यू में कितना हो रहा है और वो 1.2 और 2.2 का जो स्प्लिट है, तो हमें लगता है अभी भी हम उससे थोड़ा दूर है उसको वो पुश मतलब उस लेवल तक फायदा तक पहुंचने के लिए. एंड डेफिनेटली देयर विल बी टाइम व्हेन वी विल बी शेयरिंग द रेवेन्यू और उसका एक ग्रोथ अलग से वो हम लाएंगे. आई थिंक वी स्टिल
अगर मार्जिन में इम्पैक्ट है, इफ द मार्जिन्स आर गोइंग अपवर्ड्स व्हेन रोबो 2.0 मीट्स योर टारगेट्स, इंटरनल टारगेट्स जो भी आपने सेट किए रहेंगे, तो हाउ मच, आई मीन आई नो यू विल नॉट गिव अ गाइडेंस करंटली, इट्स टू अर्ली, बट बॉल पार्क कितना आपको लगता है इफ यू कैन जस्ट क्वांटिफाई, बिकॉज़ मार्जिन्स आर क्वाइट हेल्दी दैट वे.
सो मार्जिन के मामले में हम बोलते आ रहे हैं कि हमारे जो रेगुलर प्रोडक्ट है उससे एटलीस्ट 10% मार्जिन हम एक्स्ट्रा देखते हैं रोबो 2.0 वाले प्रोडक्ट्स में इन ग्रॉस मार्जिन्स. दैट इज वॉट वी आर टारगेटिंग, हमारे जो रेगुलर मार्जिन है उससे 10% एक्स्ट्रा मार्जिन हम रोबो 2.0 वाले प्रोडक्ट से कमाए. एंड मार्जिन के मामले में हम पहले से क्लियर होना, पब्लिक ही बोलते भी आ रहे हैं उसके बारे में. जस्ट जो रेवेन्यू का प्रोपोर्शन है कम्पेयर टू ओवरऑल बिजनेस उसमें अभी वो थोड़ा मतलब काफी छोटा है. वो एक लेवल पे पहुंच जाएगा व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको भी सामने रखते हैं. एंड देन इट इज व्हाट इट इज, वी आर ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट कंपनी. तो जो उसका ग्रोथ होगा या नहीं होगा या जैसे आगे जाएगा तो इट विल बी व्हाट इट इज, व्हाट इट विल बी.
Cool. I'm new to the company, so could you just tell me what are the OEM products in Pro Range? I mean, because we have added 650 SKUs this time, so what are those products and, you know, how are we bullish on that?
So, if you talk about Robo 2.0, I'll just give you overview of Robo 2.0. Currently, usme aapko teen mote leg dikhenge. One is our SmartLeg products, other is our Simplify products, and then our Pro Range products. एंड जो हमारे प्रोरेंज के प्रोडक्ट्स है वो प्रोरेंज के प्रोडक्ट्स में हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं. जैसे एक ही सेंसर वाला सेगमेंट है तो उसमें हमने कुछ एसक्यूज ऐड किए. प्रोरेंज इज समथिंग दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट आई थिंक 4-5 years. उस पर अग्रेसिव नहीं थे, लास्ट 2 years से थोड़ा अग्रेसिव हो गया. तो उसमें सेंसर्स है, अलग अलग तरीके के सेंसर्स आते हैं उसमें. आई थिंक 100-200 सेंसर हमने ऐड कर लिए होंगे. फिर उसमें कुछ मॉड्यूल्स आते हैं प्रोरेंज के जो हम नहीं बना सकते लेकिन हम OEM करके ले रहे, तो वो मॉड्यूल्स में. फिर 3D प्रिंटिंग के फिलामेंट्स हमने प्रोरेंज के एटलीस्ट 100 ऐड कर लिए होंगे पिछले एक साल में. देन पिछले साल हम कुछ ड्रोन के प्रोडक्ट्स का भी OEM पे फोकस किए थे. आई थिंक मोटर्स हमने ऐड की थी, कुछ प्रोपेलर्स, कुछ फ्रेम हमने ऐड की हुई है. तो जो मोटा मोटी मुझे याद आ रहा है वो दिस इज अराउंड दैट. ऑल्सो हम टूल्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मल्टीमीटर्स वगैरह वो भी ऐड किए कुछ. तो मोटा मोटी ये 3-4 जो कैटेगरी है उसमें हमने ऐड किए हुए थे प्रोरेंज के प्रोडक्ट्स.
ओके दैट हेल्प्स. थैंक यू, आई जॉइन बैक द क्यू फॉर द क्वेश्चन.
थैंक यू सर.
थैंक यू. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम द लाइन ऑफ परिन गाला फ्रॉम सेग वन. प्लीज गो अहेड.
अतुल, sorry, again harping on the same question on drones a little bit and all. I understand it's preliminary and everything, but can you just explain in drones what exactly have we developed? And when you say in the defense sector, you know, right now there is the sector is very hot and there are a lot of inquiries and there's a lot of competition also. So what are you doing there, and are you collaborating with somebody? Are you directly engaged with the Defense Ministry, or how is it working?
Okay, Parinji. So I'll explain that scenario to you guys. So basically, in drone segments, 2 years ago, we started making our own products. And then I think, as you said, the sector is very hot. We started receiving inquiries. So we started working with defense directly. As of now, we are working directly. And we are supplying some low value and low volume products to them. The strategy right now is drone, अगर आप बोलेंगे तो आपको 1-2 किलो से लेकर 300-400 किलो तक उसको ड्रोन ही बोलते हैं. सो देर इज अ वास्ट अरे ऑफ ड्रोन. इट्स जस्ट लाइक सेइंग की गन, बिकॉज अगर मिलिट्री के लिए गन है तो एक छोटी सी गन भी है, फिर AK-47 है, फिर वो पता नहीं जीप वीप पे माउंट करने वाली और भी कोई बड़ी सी गन होती है. तो आई थिंक ड्रोन में भी बहुत सारे सेगमेंट है. उसने आई डोंट वॉन्ट टू शेयर द डिटेल्स एग्जैक्टली, बट हमने हमारे हिसाब से 1 या 2 SKUs पे फोकस किया है कि 1-2 SKUs हम अगर बना पाएंगे और अच्छे से किसी 2 SKUs को लेकर एंगेज होंगे मिलिट्री के साथ, तो इफ वी क्रैक दैट तो वी विल हैव अ सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म बिजनेस विद देम. दैट इज द होल स्ट्रैटेजी और फिलोसॉफी. एट वन साइड हम इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हैं ये बात कि हम ये चीजें कर रहे हैं, रोबो 2.0 कर रहे हैं, उसका ये फायदा हुआ है, ये एंगेजमेंट चालू हुआ है डायरेक्ट. ऑन द अदर हैंड, वी डोंट वॉन्ट यू गैस टू गेट टू मच एक्साइटेड, क्योंकि ड्रोन हॉट कीवर्ड है और मैं 10 बार ड्रोन बोलूंगा तो आई डोंट नो, इट विल आई नो इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन शेयर एंड ऑल दिस, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. मैं उसको रियलिटी पे स्टिक करना चाहता हूँ. तो वहां पे हमें कुछ बहुत बड़ा सब्सटेंशियल रेवेन्यू नहीं मिला है. यस, सक्सेस हमें जो मिला है कि जो एंगेजमेंट में हमारे ट्रायल्स वाइज हुए उसमें हमें कुछ कुछ सक्सेस मिला है. प्रोडक्ट्स हमारे हम दे रहे लो वॉल्यूम्स में आज के डेट में भी उनको, बट उसका सब्सटेंशियल इम्पैक्ट होने के लिए जो आई आई एम फोर्सिंग के अगले 2 साल में इधर विल बी इन और आउट ऑफ दैट बिजनेस. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट. एज यू सेड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज हॉट सेगमेंट है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं. सो दैट इज द सिचुएशन एज ऑफ टूडे.
श्योर अतुल, थैंक यू.
थैंक यू करण जी.
थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम द लाइन ऑफ योगेश भाटिया फ्रॉम सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट. प्लीज गो अहेड.
यस सर, हाय सर. आई एक्चुअली वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव ग्रोन यू नो फ्रॉम अ 30 करोड़ टॉप लाइन इन 5-6 years टू 300 करोड़ टॉप लाइन कंपनी. सो वॉट इज द एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी सेल, बिकॉज यू नो इट्स क्वाइट नीश प्रोडक्ट्स दैट वी आर सेलिंग. सो एंड वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज द यू नो टैम दैट वी थिंक इज अवेलेबल फॉर अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सेल और वी कैन सेल गोइंग फॉरवर्ड.
थैंक यू योगेश जी फॉर दिस क्वेश्चन. हमारे लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज इफ यू गो 2 years बिफोर टूडे देर वॉज नो ड्रोन एंड देर वॉज नो हॉट सेगमेंट कॉल्ड एज ड्रोन. उसका इतना डिमांड नहीं था. उसके अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो मे बी AI और IoT जैसे उन चीजों का डिमांड नहीं था, और 2 साल पीछे जाएंगे तो 3D प्रिंटिंग वैसे टेक्नोलॉजीज का डिमांड नहीं था. तो बिकॉज वी आर इन टू न्यू टेक एंड दोज काइंड ऑफ बिजनेसेस, तो टाइम निकालना, बिकॉज देर आर नो कन्वेंशनल सेटअप्स एंड कन्वेंशनल मॉडल्स इन दिस, वो थोड़ा सा हमारे लिए ट्रिकी हो जाता है. वी आर ट्राइड बट हम कन्विंसिंगली नहीं निकल पाए हैं. हैविंग सेड दिस, देर आर इंटरनेशनल कंपनीज, समबडी लाइक डिजिकी, माउजर, एरो और फार्नेल, इलेमेंट 14 जिनका इंडिया में भी है. तो दोज कंपनीज आर डूइंग लाइक डिजिकी इज आई थिंक डूइंग $2-5 billion. इट्स अ बिग डिफरेंस नंबर, बट यस आई थिंक दे आर डूइंग 2 billion, 3 billion रेवेन्यू ईयर. माउजर से आधा कर रहा होगा. यस बिलियन, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियन. सो 15,000-16,000 करोड़. बट वी कैन नॉट से कि उनका और हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है. वो बिजनेस मॉडल काफी अलग है. वो एक जगह वेयर हाउस करके एंड ऑल ओवर वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हम इंडिया एज अ मार्केट को टारगेट करें खाली. तो इट्स वेरी ट्रिकी. हमने पहले एक स्टडी किया था जिसमें हमने मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि क्या पैरामीटर्स एग्जैक्टली सेट किए थे, बट यही सारी कंपनीज का रेवेन्यू निकाला था. रफली इंडिया में कितना कर रहे होंगे, फिर
कितना ये आगे ग्रोथ होगा ऐसा, तो हमारा एक था कि बाय 2030 विल हैव अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास इंडिया का मार्केट। अब इसमें बहुत सारे ईप एंड बट्स है अगेन कि फिर आज अगर इतना मार्केट है 2030 में तो 7,000-6,000 आज होगा, तो फिर वो कौन कर रहा है क्या है, तो इट वॉज जस्ट।
आप थोड़ा समझा पाएंगे कि मतलब जो अपने ऑर्डर आते हैं ये बल्क ऑर्डर्स है या मतलब, और इफ दे आर नॉट बल्क ऑर्डर्स देन आर देयर लॉट फ्रॉम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम यू नो पीपल हु आर प्रोटोटाइपिंग, मतलब थोड़ा नया है, एकदम नीच है, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यू नो
ये समझा सकता हूँ। तो बेसिकली हमारे जो कस्टमर है उसे हम बोलते हैं हॉबी एजुकेशन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। तो आपने जैसे बोला कुछ लोग शौकिया तौर पे ड्रोन बनाते हैं, रास्पबेरी पाई की कुछ चीजें करते हैं, तो दैट इज वन मार्केट विच इज वेरी स्मॉल सेगमेंट, स्मॉल रेवेन्यू फॉर अस राइट नाउ। एजुकेशन में फिर आप स्कूल के बच्चों से ले लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेजों का पीएचडी हो गया, तो उसमें बहुत सारे ट्रेनर्स है जो जाके अपने किट्स लगाते हैं या लैब सेटअप होता है तो डायरेक्ट कॉलेज वाले खरीदते हैं। अटल टिंकरिंग लैब है गवर्नमेंट स्कीम से, उनके अंदर होता है एजुकेशनल सेगमेंट में मार्केट का, तो वो एक एजुकेशनल का सेगमेंट है। हम डायरेक्टली अभी ट्रेन नहीं कर रहे स्कूल कॉलेज में जाके, जो ट्रेनर्स है वो हमारे कस्टमर्स है मोटा मोटी। अगर लैब लगानी है तो लैब लगाने के लिए हम डायरेक्टली स्कूल कॉलेज को मटेरियल दे देते हैं।
So 20-30% sales would be coming from educational institutions or this kind of...
I mean, we have stopped giving the breakup of the revenue because of the competition thing. But yes, I would say that this is one of the customer base. Then second is research. Jo aap bole the ki startup hai ya badi company mein bhi prototyping wagera use karte ho. And then engineering. So engineering is something which is going for production. तो 100-500-2000 क्वांटिटी जिसको चाहिए अपने प्रोडक्ट मंथली कुछ बना रहे हो उसके लिए, जो बहुत हाई वॉल्यूम जैसे टाटा की कोई कार बनती है और उसमें कोई आईसी जा रहा है, डिस्प्ले जा रहा है, चिपसेट जा रहा है, वो हमारे कस्टमर नहीं है। एंड इन लॉन्ग टर्म वेरी हाई वॉल्यूम जो है वो अलग तरीके से कैटर होते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इतने बड़े होते हैं कि वो डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स या ब्रांड है उनके साथ काम करते हैं। हमारे साथ भी कर सकते हैं बट आई विल से प्रोपोर्शनली काफी कम रहेगा वो लॉन्ग टर्म इवन। So, this is overall business of Robo and the overall customer base of Robo, I would say.
And do you only sell products which are with you in inventory or depending on the requirement, you can import and then sell it also? So, you are like, you know, more efficient just in time.
Yes, yes, yes. So, हम दोनों करते हैं। हमारे पास inventory में है तो हम तुरंत दे देंगे and अगर आपको वैसा है कि ये प्रोडक्ट चाहिए तो लीड टाइम है तो व्हाट एवर 15-30 days लीड टाइम, वो लीड टाइम पे भी देते हैं, विच इज ऑफकोर्स मोर एडवांटेजेस फॉर अस। इन्वेंटरी रखना है ऑर्डर पहले तो आई मीन आई कैन जस्ट बैक टू बैक।
हाउ मच ऑफ योर ऑर्डर जनरली वुड बी एन ऑर्डर विच कैन वेट एंड यू नो पीपल आर ओके विद 15-20 days डिलीवरी टाइम?
तो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स वी सर्व फ्रॉम आवर इन्वेंटरी बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि हमारे बहुत वैसे कस्टमर नहीं है कि टाटा की गाड़ी बन रही है, महिंद्रा गाड़ी बन रही है, उसमें जा रहा है। तो इवन इन आर केस हाई वॉल्यूम इज 1,000-2,000-5,000 प्रोडक्ट क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी। तो बिकॉज वी आर डूइंग बिजनेस फॉर ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड नाउ, 10-12 साल से कर रहे हैं, तो मोर और लेस हम इन्वेंट्री अपने पास रखना प्रेफर करते हैं। दैट इज ऑल्सो वॉट इज कस्टमर्स प्रेफरेंसेस। अगर वो नहीं होगा तो जो कस्टमर के वॉल्यूम है 2,000-3,000 तो दे आर वेटिंग एंड रेडी टू वेट, उनको हम कुछ क्वांटिटी दे देते हैं एंड देन दे आर वेटिंग फॉर व्हाटएवर जनरली अराउंड द मंथ टाइम टू गेट द प्रोडक्ट।
ओके एंड डू यू थिंक दैट द पास्ट ग्रोथ कैन बी अचीव्ड और यू थिंक इट कैन प्लेटो बिकॉज फ्रैंकली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द मार्केट ओनली, सो यू थिंक विल बी एबल टू?
योगेश जी आप थोड़ा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, मतलब आई एम अ रियलिस्ट, तो मैं भी खुद से ये सवाल पूछता हूँ कि यार ये ग्रोथ कर रहे हैं हम, एफर्ट लगा रहे हैं हम, रेवेन्यू को ऊपर रखते, मतलब हम ज्यादा वैसे है कि यार नहीं होगा क्यों नहीं होगा और उसके पीछे चलते हैं, मतलब वो टारगेट लेते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज जुगाड़ करते हैं और वो हो जाता है। हाउएवर वी बिलीव, मतलब ये तो मुझे भी अंदर से कहीं लगता है ना कि यार कभी तो ये सैचुरेट होगा या जो मार्केट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन ये सब जो सेगमेंट है ड्रोन का है एआई का है सब बढ़ रहा है, तो कभी ना कभी तो ये सब सेगमेंट भी तो सैचुरेट होंगे। सैचुरेट अब तक तो नहीं हुआ है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आते हैं, हम उसको अर्ली कैप्चर करते हैं, वी गेट फ्रूट्स ऑफ इट। तो दैट आई मीन आई वुड लव टू हैव इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, बट यस योर गेस इज एज गुड एज माइन। सिटिंग टुडे आई कैन सी के वो इलेक्ट्रॉनिक्स और वो वाला मार्केट अभी हॉट रहेगा आने वाले एटलीस्ट 2-3 साल तो मुझे दिख रहा है विद जियोपॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग गोइंग द वे इट इज। एंड आप लाइफ में भी देखोगे तो डिपेंडेंसी बढ़ ही रही है इलेक्ट्रॉनिक्स और वैसी चीजों पर। या शॉर्ट टर्म में तो आई थिंक इट्स अ गुड सेगमेंट, गुड हाई ग्रोथ सेगमेंट, एंड प्लेटो का जितना लेट उतना अच्छा कभी तो होगा, तो देखेंगे।
डन सर, ऑल द बेस्ट सर, एंड आई थिंक you will definitely do well because demand is there. We can't understand, but I think it is definitely there.
Thank you.
Thank you. Our next question comes from the line of Rohit Prakash, an individual investor. Please go ahead.
Thank you for the opportunity and an amazing performance as always. So my first question is, as you indicated that the growth is remaining strong, but if we continue to grow the same way, we would have to take more debt to fund the growth. So in terms of debt to equity ratio, we are already probably at the highest we've ever been. So any thoughts on till where we are willing to be comfortable to take on debt to grow, or at some point do you think we will need equity? Any thoughts on that?
Thank you, Rohit ji, for this question. So we are not worried about the debt anytime, like pichle 10-12 saalon se jo bhi hum company chala rahe, so we are never worried about the debt for company, because hum jo bhi debt lete hain most of it or almost sara debt we convert it into inventory, which inventory we are going to sell and make revenue for company. So I think it is part and parcel of our business model. So it is a very low risk debt if I understand our business model correctly, and हम हमेशा सेल्स को आगे रहते टॉप लाइन को, कि अच्छा ये सेगमेंट रोबो का टोटल रेवेन्यू है वो लेट्स से 6 या 8 सेगमेंट में डिवाइडेड है, वो सेगमेंट में फिर सप्लायर आएंगे, फिर उसका ट्रेंड देख के उसको ग्रो करने के लिए स्कोप है क्या, तो फिर अच्छा ये इन्वेंट्री बढ़ानी पड़ेगी, नए प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे इस सेगमेंट में, तो ऐसा करने से हमको जब लगता है कि रेवेन्यू बढ़ने वाला होगा तो वो डिमांड आती है कि अच्छा यहाँ से इतना इतना पैसा लगेगा, तो सम करके इतना पैसा लगेगा, हमारा जनरेटेड पैसा इतना ही होने वाला है, ये एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो इतना रेवेन्यू कर लेंगे। सो बिकॉज आर फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग, हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं, तो वी आर नेवर वरीड और अफ्रेड ऑफ डेट, वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ इसको मूव कर लेंगे। यार डिमांड स्लो होती है तो वो सामने से नहीं आएगा, कह रहे नहीं यार पुराना वाला इन्वेंट्री उतना फास्ट नहीं मूव हो रहा तो नया क्यों चाहिए, तो वंस दैट हैपन्स आई थिंक इट आवर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ इट, वो ऐसा नहीं है कि चलते ही जाएगा डिमांड का मूव भी हो गया तो। सेकेंडली आवर इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी गुड, तो वी हैव बीन focusing on building a good inventory management system and we are happy कि वो अच्छे से perform करता है, जो product नहीं चलते वो धीरे धीरे नीचे जाके obsolete हो जाते हैं, उसका बहुत debt वगैरह भी generate नहीं होता है, जो चलते हैं product वो भी सही time पे आते हैं और हमें revenue में support करते हैं, तो I think with this strong fundamentals I would not say we don't care, we do care about that, but we are not afraid, हम उसको एक opportunity की तरह देखते हैं, that's a business opportunity, that's our strength. जो हमारी रेवेन्यू है सॉरी हमारी इन्वेंट्री है, दैट्स आवर स्ट्रेंथ, क्यूरेटेड सही प्रोडक्ट सही प्राइस पे सही टाइम पे हमारे पास होना इज आवर स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक विद दिस अगर वो सामने से डिमांड आ रही है हमारी सिस्टम डिमांड जनरेट करे और फिर डेट बढ़ता है तो वी डोंट हैव टू वरी एनीथिंग अबाउट इट।
अंडरस्टूड, सो सिमिलर एनी क्वेश्चन और थॉट फ्रॉम द बैंक की, I mean, we have a 90 crore equity, which will get to whatever number, let's say, down the line. So, both say, do they say ki ye ratio ke upar we are not comfortable giving debt, or no conversation like that at this point in time?
So, they are comfortable as long as they see the revenue. So, har saal ka ek, hamara banking partner, I think, 7-8 saal se to same banking partner hai hamara. And every year, whenever we are having more debts, वो कन्वर्ट होता है, उनको दिखता है कि वो इन्वेंट्री भी कन्वर्ट हो रहा है, इन्वेंट्री का रेवेन्यू भी कन्वर्ट हो रहा है, तो आई थिंक विद दीज नंबर्स अराउंड अस दे आर वेरी कंफर्टेबल विद डेट्स, मतलब I don't remember a conversation where they are uncomfortable with these ratios and everything. I think it's how well you are converting it into revenue. As long as it is happening, everyone is comfortable. Us, banks, investors. So I think the focus should be on that.
No, no, perfect. Thank you. That was helpful. Or, so I want to follow up on the average order value question. I mean, very strong growth in the average order value, right? So year on year growth itself is quite strong. Like we were sub 4,000 or 5,000 or something last year. Sabhi we are, I mean, last quarter we said about 7,000, but let's say more than 6,500, we are between 6,500 to 7,000 right now. So is that order, I mean, are we bunching up orders or is it that the average order value is increasing and why is it, I mean, how is it increasing so strongly? I would assume, I would understand a number of orders increasing because we've also already discussed the trends of, I mean, we are in the right market in terms of trends and a lot of things are hot. But how is the average order value increasing and is the number sustainable and is the growth sustainable?
Rohit, I think we have, there are two sides to it. I think one is overall the Indian market is maturing. There are a lot of companies who are working in electronics. They are growing from startup to mid-range companies, also from mid to high. So since we are catching them early and serving the requirements then when they are small, they trust us when their requirement goes. So uske wajah se ek organic boost milta hai hame average order value ka. Secondly, humne हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो जब बढ़ाते हैं तो भले ही नंबर ऑफ कस्टमर्स का ग्रोथ का एक लिमिट है कि कितने फास्ट बढ़ता रहेगा, बट सेम कस्टमर्स इन इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पहले हमारे चार वो थे तो अब उसको नया हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऐड हुआ है टूल्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो उससे खरीदेगा, कंपोनेंट हमने ऐड किए तो उनको कंपोनेंट कहीं ना कहीं लगते ही रहते हैं. तो आई थिंक इट इज मोर ऑफ एक छोटे किराना दुकान से अगर आप डीमार्ट बन जाओगे तो किराना दुकानदार वाले का कार्ड वैल्यू छोटा ही रहेगा 100-200 का, बट आप डीमार्ट में जाओगे तो आपको वो सामने दिखता है खरीदते ही लोग. सो इट्स मोर ऑफ दैट काइंड ऑफ फेनोमेना. यस, वी विल आल्सो लाइक टू टेक अ स्मॉल क्रेडिट, स्मॉल वन, कि हमने कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते लिए हैं टू इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू. सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस देम फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट यस.
आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग.
ओके, इज इट बेटर नाउ?
No, sir. Still breaking.
Okay. Hello. Is this better?
No, sir. I'm so sorry.
Yes. Is this better now?
Yes, sir. We can hear you.
Yeah. So I was just saying कि एक तो market का growth हो रहा है और दूसरा हमने product portfolio बढ़ाया है plus some other strategic decisions. उनके वजह से हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू पिछले साल बढ़ा है, उस पे ने थोड़ा एफर्ट भी लिया है और बाकी भी डायनामिक्स. तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन रोहित जी.
यस यस, एंड आई थिंक वी आर क्लोज टू लिस्टिंग, मेन बोर्ड लिस्टिंग 3 years इज अप एंड आई थिंक वी मीटिंग द नेटवर्क रिक्वायरमेंट आल्सो व्हिच आई रिमेंबर इज अराउंड 75 करोड़. तो आर वी देयर एंड व्हाट इज द प्लान हियर?
सो हम जब एसएमई में लिस्ट हुए थे 3 साल पहले तो तभी हमने डिसाइड किया था कि यार हमको कभी ना कभी मेन बोर्ड पे जाना है, बड़ी कंपनी बनना है, तो बड़ी कंपनी वाली आदतें डाल लेते हैं. एंड फ्रॉम डे वन वी आर गिविंग Q3 का रिजल्ट. आई थिंक मे बी फर्स्ट टाइम हमने मिस कर लिया था, उसके बाद हम क्वार्टरली रिजल्ट. तो हमारा इंटेंशन तो डे वन से है कि यार बड़ी कंपनी बनना है तो ऐसी आदतें डाल दो, क्वार्टरली रिजल्ट दो. एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑब्वियसली हमने वो कुछ डिसीजन लिए पब्लिक के जो मेन बोर्ड पे जाने के लिए रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने के लिए. हाउएवर वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेट और टाइम इन माइंड एज ऑफ नाउ. व्हेन एवर वी हैव वील हैव एनी अपडेट रिगार्डिंग टू दिस वील जस्ट अनाउंस इट पब्लिकली. आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट.
Perfect. And last question on margin. So again, a very healthy margin. Gross margin is 24, which is among the best we've done. And even PAT margin also among the best. So with scale, are we getting the scale advantages and these margins are sort of sustainable going forward?
Margin, we have taken conscious effort during last year to put on margin and say ki nahi hum
कम मार्जिन मार्जिन को एज अ करेंसी यूज करेंगे तो फिर बिजनेस तो आएगा ही. तो वी हैव पुट आवर फुट एंड सेट आवर सेल्फ के नहीं, हम थोड़ा मार्जिन पे भी प्रेशर रख के बिजनेस बढ़ाने का कोशिश करते हैं. आई थिंक इट हैज वर्क वेल इन लास्ट ईयर फॉर अस एंड वी बिलीव रादर वी होप इट विल वर्क इन फ्यूचर एज वेल. लेट्स सी. इट इज अ वेरी आई वुड से हमारे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें मार्केट डायनामिक्स भी है. जैसे कॉम्पिटिशन एक पार्ट है उसका, दूसरा पार्ट है कौन सा सेगमेंट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. तो जो सेगमेंट में हमें मार्जिन अच्छा है अगर वो मिक्स का ज्यादा प्रोपोर्शन वो करता है तो देन वील ऑब्वियसली हैव अ लिटिल बिट लेवरेज इन मार्जिन. बाकी इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि हम कॉम्पोनेंट दो साल पहले हमने चालू किए थे, उसका थोड़ा बहुत इन्वेंट्री जो डेड इन्वेंट्री वो भी बड़ा है, बट वी आर गेटिंग बेटर मार्जिन आउट ऑफ दैट कैटेगरी. वो कैटेगरी भी लग रही है कि सेट हो गई है. तो दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स वी हैव टेकन एंड देर आर सम मार्केट फैक्टर्स एज वेल जिसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है. वी वुड लाइक टू कीप द मार्जिन एज देयर. हाउएवर एक थोड़ा नेचुरल फ्लो है वो मार्जिन को कम कम करने वाला ही होता है. जैसे स्केल बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, वेयर देयर इज हनी देयर विल बी हनी बी वाला है. तो रोबो 2.2 कॉम्पोजिशन का सेगमेंट स्केल का एडवांटेज वैसा लेके हम कोशिश करेंगे कि उसको जितना हाई पॉसिबल है उतना रखें.
Understood. No, thank you. As always, very helpful conversation. Appreciate it. Thank you and all the best.
Thank you, Rohit. Thanks a lot.
Thank you. Our next question comes from the line of Parineet Bomisetti, an individual investor. Please go ahead.
Hi. Thank you for the opportunity. So in terms of, I was trying to understand own branded products. I understand that right now we're investing and we're seeing how it is going to go. So at this point of time, how much are you investing into this and what is the kind of outlay we expect to invest in the next year?
Thank you, Barniji, for the question. So we are not investing in terms of either equipment or in terms of inventory in those products compared to our main business. So abhi jo investment chal rahi, it is the team that we are building, rather we have built for development of these products. Just to give you a rough idea, maybe 2 saal pehle humare paas 4 log the jo development ka kaam kare the product. Now we have a strong team of roughly 20-25 people, whatever 3-4 brands that we are doing combined. So that is number one. Second, I think is the investment in terms of my, Binod's and Nilesh time and attention. So it's a conscious effort. So hum jo Robo 2.0 hai usko ek Robo 1.0 ki tarah hi respect se एक अलग सेगमेंट की तरह चलाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उस पर हमारा टाइम डालते हैं, अटेंशन डालते हैं. तो द टीम नोज इट इज इम्पोर्टेंट एंड आई थिंक दीज आर द की इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग. अभी उसको कुछ हमने फैक्ट्री डाल दी है या कुछ किया है ऐसा नहीं है. मोस्टली इट इज इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम प्लस आवर टाइम एंड अटेंशन. उसका जो एक साल का है वो तो मैं उतना श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन I think 3-4 years down the line, we think it will help us to control margins in a better way. जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारे +10% का expectation रहता है, जो हमारे general margin है distribution वाले products का, उससे 10% ज्यादा हम Pro Range, Smart Relax, Simplify, EasyMac ये सब brand से कमा पाए. And we have been able to do that so far. And then उसका मार्केट एक्सेप्टेंस कितना होगा, उसको कितना स्केल कर पाएंगे, आई थिंक दैट इज अ बिट ट्रिकी. तो उस पे जस्ट टाइम विल हैव टू टेल अस कि वो कितना स्केल कर पाते हैं. वी वांट टू स्केल इट, हम टाइम उसमें डाल रहे हैं, टीम बिल्ड की है, उनका सैलरीज हो गया या बाकी जो है उसमें एफर्ट्स लगा रहे हैं अभी. तो लेट्स सी एंड आई होप फॉर द बेस्ट.
Okay, understood. So you mentioned that in this business, team is a big part, right? So in terms of scaling our revenues, team will also play a huge part. So are we actively hiring more people or with the existing, I'm not talking just about the own brand products, I'm talking about the remaining team who are running Robo as it is, like the Robo 1.0, which is going forward. So are we going to aggressively hire more people in terms of to grow sales, or how are we going to grow sales? I understand that you can do development and all of that, but it's mostly a people thing, right? They have to develop their own sources and customers. Could you explain on how are you planning in terms of team and growing the pie from there?
तो लास्ट 4-5 ईयर्स हम जब भी साल का बजटिंग करते हैं या साल के रेवेन्यू नंबर्स लेते कि अगले साल क्या टारगेट है, क्या एक्सपेंसेस जाएंगे एंड क्या प्रॉफिट बचेगा, तो उसमें हम हर साल हमारे जो मैन पावर का जो कंपोनेंट है, सैलरी का जो कंपोनेंट है, वी ट्राई टू रिड्यूस इट स्लाइटली लोअर. बिकॉज अगर आप दोगुना बिजनेस करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस को डबल कर लेते हैं तो आपको डबल मैन पावर नहीं चाहिए. ठीक है, आपको डबल, अगर एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गया तो आपको डबल पैकेज भी पैक नहीं करने हैं. फिर आपके जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है वो 100 सप्लायर से 100 क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहा था, वो 200 क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहा है, सेम परचेज पर्सन है. सेल्स पर्सन को भी डबल कस्टमर नहीं हो गए, ठीक है, 1.2 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, 6 बढ़ेंगे, 1.5 टाइम्स, 1.6 टाइम्स. तो उस हिसाब से हम पिछले 4-5 साल से वो ऑप्टिमाइज करते आ रहे हैं कि रेवेन्यू जितना टाइम्स ग्रो होने का एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मैन पावर या उसके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ने चाहिए, थोड़े कम ही होने चाहिए. एंड वी गॉट अ हैंग ऑफ इट नाउ कि हाँ यार इतना इतना रियलिस्टिकली होता है, उस हिसाब से करते. तो आई थिंक दैट इज वेयर वी रोबो 1.0 के लिए तो वो काफी कैलकुलेटेड और अभी एक साक्षी में बैठ गया. जब रोबो 2.0 का बात आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार ये प्रोडक्ट डेवलप करना है ना, सेपरेट बंदा चाहिए, ले लो, उसमें वो सब मत सोचो कि उसका सैलरी जाएगा एक्स्ट्रा, अगर उसको ज्यादा काम नहीं, आधा ही काम है तो क्या, आधा काम है तो भी ले लो, बिकॉज उसका हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं कि वो प्रोडक्ट जल्दी टाइमली डेवलप होना जरूरी है. तो आई थिंक वी आर मोर अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू रोबो 2.0 एंड मोर कंजर्वेटिव व्हेन इट कम्स टू रोबो 1.0 इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट मैन पावर डेवलपमेंट.
Understood. And one more thing, in terms of the margins, you mentioned that the own brand, once it develops, is likely to help with the margins. So could you explain, you mentioned the 10%. Is it 10% higher than our existing gross margin, or is it 10% extra? So it's, let's say if it's 25 today, it's 35 for that, or is it only like 27.5?
No, it's roughly 10% extra than our existing gross. So agar yahan pe 24-25, so aap pe 34-35. That is the expectation from our own branded products, and that is when it will cut off, right? So agar hum overall revenue ke 5% bhi kar pate hain, let's say 5 year down the line, I'm not cutting number, just an example. So agar 5% product pe mera 10% extra margin hai aur comparatively uske expenses utne nahi hai, to wo plus 10% ka main aadha percent, 1/20th, 5% is 1/20th, to 10 ka 1/20th is aadha percent. तो मैं आधा परसेंट मार्जिन मेरी ओवरऑल कंपनी के मार्जिन में बढ़ाऊंगा. अगर मेरे 5% प्रोडक्ट का डेल्टा जो मार्जिन में वो 10% है हाइयर साइड, तो मैं ओवरऑल रेवेन्यू को आधा परसेंट, सॉरी ओवरऑल कंपनी के मार्जिन को आधा परसेंट बढ़ा लूंगा. अगर यही वो कंट्रीब्यूशन 10% करते हैं ओवरऑल रेवेन्यू में, तो मेरा ओवरऑल मार्जिन 1% से बढ़ जाएगा. एंड आई थिंक यू गाइज नो इट बेटर देन मी कि 6% पैट लेवल वाली कंपनी और 8% पैट लेवल वाली कंपनी को देखने में बहुत अंतर दिखता है. तो I think we are just striving for that plus 1-2% in long run. So that is the whole philosophy. And second is control. कि हमारे brand है, हमारे product से तो कोई competition नहीं आ जाए, competitor cut नहीं कर पाएगा easily. Brand image लोगों के दिमाग में बन जाती है, तो it helps us new product जो हमारे brand में करेंगे उनका sell करने में. तो all those factors are also there.
Got it. And in terms of the company positioning in the last year, 2-3 years, we grew quite a bit. And but there also have been existing players that are also growing at equal pace, or let's say a little lower than Robo in terms of execution. Could you give an idea on like what kind of market share we might occupy in some of the segments, at least the popular segments, and how are the other people competing? So in terms of understanding overall market, because it's extremely unorganized market, especially locally. So could you explain on how the market, how the market's positioning Robo and where do we want to be?
I think जो unorganized market है उसका percentage और वो data है ना, वो available ही नहीं होता है. तो it's very difficult to reach to a number कि हाँ हम 50% market share करना चाहेंगे, 70%. I think ये जो हमारा segment है वो उतना mature नहीं हुआ है अभी. Maybe 10 year down the line, I don't know, maybe then when you can say okay. जैसे international market में हमें भी बोलते हैं ना कि डीजी की इज द किंग, डीजी की सबसे बड़ा है, उसका आधा रेवेन्यू लगभग माउजर का रहता है, फिर उसके बाद इलेमेंट 14 फार्मिंग ग्रुप आता है, फिर एरो आता है, और उन्होंने अपना अपना एक
नीच में भी एक स्पेशल नीच बना लिया और उसके हिसाब से कस्टमर्स भी उनके सेग्रीगेट हो गए. बट आई दोज कंपनीज आर लाइक डीजी की सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस जस्ट आई थिंक 2023 or 2024. तो ये मार्केट भी मेच्योर होगा 10 ईयर डाउन द लाइन एंड देन वी कैन बेटर डिस्कस दीज नंबर्स के हाँ रोबो नंबर वन पे है और उसका इतना मार्केट शेयर है और ये 3-4 मोटा मोटी प्लेयर है, बाकी का छोड़ दो नीचे का 10-20% मार्केट होगा तो ये 3-4 प्लेयर है तो फिर परसेंटेज वाइज डिस्कशन और वो सब बात कर सकते हैं. अभी के लिए आई थिंक इट इज वेरी हार्ड टू कन्विंसिंगली पुट अ नंबर टू इट.
बट एटलीस्ट कुड यू टेल लाइक हाउ द मार्केट इज स्प्लिट, सो लेट्स से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स लाइक यू एंड मिलेनियम एंड वर्सेस लेट्स से मोर अनऑर्गेनाइज्ड स्मॉलर प्लेयर्स वर्सेस द इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक मोज़र, बिकॉज Mauser and all these people also have like basic presence with website or like a basic team, right? So could you explain how it is split between these three categories?
So, since you are insisting, I think positioning बहुत अलग है. जो local market, unorganized market है, उनका positioning अलग है. उनके पास उतने SKU नहीं होते. वो बहुत कम SKU पे specialized, जैसे Lavington Road Mumbai. तो वहाँ पे कोई बंदा motor बेच रहा है, तो वो 100-200 SKU motor के लेके बैठेगा और वो सारे मार्केट में कोई भी मोटर लेने आएगा तो उसी से लेगा. फिर दूसरा बंदा है वो वायर बेच रहा है तो वो वायर पे करे, कोई आर्डिनो रसोई जैसे कैटेगरी पे कर रहा है तो वो उस पे करेगा, कोई 3D प्रिंटिंग में कर रहा है तो वो उस पे करेगा. तो उनका मार्केट वैसे चलता है. डीजी के अंदर वो लोग जो है तो वो हायर वॉल्यूम से प्ले करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल 50 साल से बैठे हैं, तो टाटा महिंद्रा जैसे कंपनियों के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी वो ओन करते हैं. आई डोंट थिंक डीजी की, बट एरो ज्यादा उस पे प्ले करता है. फिर उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग डीजी की 30 लाख प्रोडक्ट है वेबसाइट पे, तो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग है, वो अलग. अब मेरे पास आई डोंट नो 1.25 लाख जो भी प्रोडक्ट है तो 30 लाख और 1.25 लाख का मैं कैसे कंपेरिजन करूँ और कैसे पोजिशनिंग करूँ उसको. तो उनका जो ओवरऑल आज का बिजनेस मॉडल है और रेवेन्यू मॉडल है वो एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन करना थोड़ा मुश्किल है. सेम विथ द लोकल मार्केट्स. यस देर आर सम 3-4 प्लेयर जो अलग अलग सेगमेंट में आज इंडिया में रोबो का बोल सकते हैं कंपटीशन है, जहां पे एप्पल टू एप्पल पॉसिबल है. जैसे 3D प्रिंटिंग सेगमेंट में कोई प्लेयर्स है, तो ड्रोन सेगमेंट में है कोई प्लेयर है जो राजवीर का आर्डिनो जैसे सेगमेंट में है. एंड वी नो कि वो जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी, मार्केट ग्रो होगा, वो प्लेयर्स आएंगे कुछ जाएंगे सेटल होगा, सो दैट विल हैपन. बट राइट नाउ वी डोंट सी एनी प्लेयर जो सारे सेगमेंट्स में रोबो की तरह कवर करे, एटलीस्ट इन इंडियन मार्केट.
Got it. But so understood. One more thing I wanted to ask is in terms of exclusive partnerships you're making with some of, let's say, the component makers. Because in this business, SKU curation is one thing, and the exclusivity of a product also can play a huge role in terms of moat, right? So do we have any exclusive partnership of such, or those things might not be in the future? Could you explain that?
There are some exclusive partnership, but I've been telling this time and again that exclusive partnership jo hai, wo, they don't mean a lot on market like India. बहुत बड़ी कंट्री है तो यहाँ पे वो पार्टनरशिप जनरली आए रिकमेंड ब्रांड के यार तुम पहले 4-5 लोगों को दो डिस्ट्रीब्यूशन, तुम देखो कौन तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है. नॉट नेसेसरी रोबो सरकार भी अच्छा परफॉर्म करे, और अगर रोबो सब्सटेंशियल तुम्हारे लिए 50-60% ऑफ रेवेन्यू ड्राइव कर रहा है तो देन आई विल गो एंड टॉक टू द ब्रांड एंड आस्क देम फॉर प्रिविलेजेस, मुझे प्राइसिंग दो, मुझे रिटर्न दो, मुझे कुछ और स्पेशल वो मार्केटिंग. वाला जो एक सिक्योरिटी है वो जो आता है दिमाग में कि देन यू कैन कंट्रोल द मार्केट, वो इतना नहीं है हमारे सेगमेंट में. दैट इज हाउ आई फील अबाउट दिस.
Understood. So basically, in terms of SKU addition, did we do any substantial SKU addition this quarter or like this
every year? Every year we keep on adding new SKUs. I mean, that is adding the SKUs is part and parcel of our business. I think last 2 years में हमने वो component के SKU add किए थे, तो volumes काफी ज़्यादा दिखते थे numbers. But अभी वो उतने बड़े numbers नहीं दिख रहे होंगे. But yes, doing this revenue requires us to add SKUs. कोई सेगमेंट में देखता हूँ तो देखता हूँ कि ये सेगमेंट में अभी इतने हैं, तो वो सेगमेंट अच्छे से ग्रो हो रहा है तो कौन से नए सप्लायर ऐड कर सकता हूँ, एग्जिस्टिंग सप्लायर के कौन से नए प्रोडक्ट ऐड कर सकता हूँ. तो
नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, नए सेगमेंट ऐड करना है, तो इट इवेंचुअली लीड्स टू न्यू एसक्यू एडिशन. इट्स अ रिजल्ट ऑफ टारगेटिंग अ पर्टिकुलर रेवेन्यू फॉर अ कैटेगरी और अ सेगमेंट. इट नेवर स्टार्ट्स विद कि हमको एसक्यू ऐड करने हैं. तो आई थिंक वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस है एंड आई एम नॉट श्योर विद द नंबर बट 10-15 हजार तो साल में हमने बहुत कंफर्टेबली ऐड किए होंगे. हेलो
हेलो या विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन कम फ्रॉम द लाइन ऑफ स्वराज फ्रॉम परपेचुअल कैपिटल एडवाइजर्स. प्लीज गो अहेड.
फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन वन क्वेश्चन वाज ऑन द लाइन इन टर्म्स ऑफ वेयरहाउसिंग कैपेसिटी. Do we have enough space at the current infra to fund growth for coming years or are we looking at expanding?
We are always looking for expanding because one thing which is unavoidable with this kind of growth is the higher the number of SKUs you have, proportionally higher space you need to keep them, proportionally higher space you require to manage the shipments. I mean, until and unless you just think of some automation which will reduce the, which will increase the space requirement, obviously will reduce the manpower requirement. But yes, increasing our warehousing space, increasing our order processing capacity has been part of our annual targets since I think day one. Ab har saal grow kar rahe hai, har saal hota hai ki yaar wo jo hai 30-40% zyada hi rakhna chahte hai. Aaj jo mera average order processing hai usse 30-40% मेरा कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए. तो इट्स ऑलवेज पार्ट ऑफ द बिजनेस, पार्ट ऑफ द गेम. उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट और वो लगने वाला है तो आई थिंक विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एट सम पॉइंट इन टाइम वेयर जैसे हमने जो हमारा अभी का सेटअप है वो 4-5 साल पहले एक बड़ा सेटअप थोड़ा ले लिया तो वहां पर मूव कर गए थे कि यहां से दिख रहा है अगले 4-5 साल एटलीस्ट हम स्टेबली काम कर पाएंगे. खैर वो सेटअप भी हमें 2-3 साल में ही कम पड़ गया. बट यस आई थिंक वो हम टाइम टू टाइम एसेस करते रहते हैं कि कब वो जंप लेना है एंड वो पार्ट ऑफ बिजनेस है मोस्ट ऑफली.
एनी प्लान्स फॉर दिस ईयर, एनी केपेक्स दैट यू आर प्लानिंग दिस ईयर फॉर द वेयरहाउस?
नॉट एज ऑफ नाउ.
One thing was average monthly visitors, they were I think 723, 582 in December. And 891 around in March 26, but average for H2 was far lower at around 6 lakhs. So, was there a steep decline in January and February and what explains this decline? So, was there an element of seasonality or?
I think wo jo visitors wala data hai na, wo maine jo disclaimer diya tha at the end of my presentation, ki agar hum pura ek saal ka nikalte hai, quarter ka alag alag nikalenge, तो यूनिक विजिटर्स होते हैं. तो क्वार्टर का अलग अलग, पिछले साल तक हम क्वार्टर का अलग अलग निकाल के सम करते थे. इस साल हमने साल का पूरा निकाला है तो जो कॉमन विजिटर्स है हर क्वार्टर वाले वो कम हो गए उसमें. तो डेटा थोड़ा सा ट्विक, आई मीन इट्स नॉट द राइट डेटा, इट नॉट बी अप्रोप्रिएट टू टॉक ऑन दैट. यस हमने चेक किया और इंटरनली हमारे जो ये ग्रोथ मैट्रिक्स है विजिटर्स वगैरह के, दे आर गोइंग. तो जो अपडेटेड डेटा है वो हम नेक्स्ट वीक विल अपडेट द डेटा जो लास्ट ईयर की तरीके से करते थे कि क्वार्टर क्वार्टर का अलग और उसका सम करके ही साल का देंगे. आई थिंक इट विल जस्ट रिमूव दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर माइंड.
एंड नंबर ऑफ यूनिक कस्टमर्स, हाउ मच वाज इट इन क्वार्टर 4 एंड व्हाट इनिशिएटिव्स आर वी टेकिंग टू एक्सपेंड कस्टमर बेस?
आई डोंट थिंक आई हैव दैट नंबर ऑन हैंड फॉर क्वार्टर 4. एनुअल जो है दैट इज 1.85 लाख रफली, जो लास्ट ईयर 1.45 लाख था वो 1.85 लाख हो गया है एंड इट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर केपीआई. हम सेल्स रेवेन्यू ब्रांड सेगमेंट ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करते हैं बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन ट्रैक. तो मेजरली हमारा सेल्स रेवेन्यू ब्रांड ग्रोथ सेगमेंट ग्रोथ उस पर रेवेन्यू मेंटेन करना उस पर ज्यादा वो रहता है. प्रोडक्ट बढ़ाना, आई थिंक दिस न्यू कस्टमर एंड new customers and more orders, it falls into place automatically.
Sorry, you said new customer and?
Number of customers growth and number of orders growth, वो automatically fall in place हो जाता है because अगर आप 10 matrix लेके चलेंगे तो focus ही नहीं कर पाएंगे. तो हम ज्यादा revenue, margins, category growth, उसकी तरफ ज्यादा वो करते हैं, product growth. एंड वी नो कि अगर वो सही हो गया तो ये अपने आप नंबर अपने आप ग्रो हो जाएंगे. उसके लिए है एफर्ट, ऐसा नहीं कि हम देखते ही नहीं है, उसके लिए भी एफर्ट है. जैसे हम मार्केटिंग में अभी मैंने बोला कि हम एग्जीबिशन वगैरह में जाना शुरू किए, वहां पे मार्केटिंग ने चैनल मार्केटिंग का वो एक्सप्लोर किया है, और भी कुछ कुछ ब्रांड्स पे आप मार्केटिंग एक्टिविटीज ऐड की है. नए कस्टमर्स को अलग से टारगेट करते हैं हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज में, उसको थोड़ा सा ज्यादा मार्केटिंग बजट असाइंड होता है. हाउएवर कंपनी लेवल पे जो मेन हमारे KPIs है उसमें वो नहीं आता.
ओके एंड यू सेड अभी कि वी आर डिप्लॉइंग ऑल आवर डेट फॉर इन्वेंटरी करेंटली राइटली, बट हाउ डू वी ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी डेज गोइंग फॉरवर्ड सच दैट द ट्रांजिशन टुवर्ड इट बिकम्स अ ट्रांजिशन टुवर्ड सस्टेनिंग अक्रूवल्स फॉर इन्वेंटरी अदर देन दैट.
तो आई थिंक इंक्रीजिंग दैट इज अ फंक्शन ऑफ हाउ फास्ट वी आर ग्रोइंग. तो दोनों चीजें एक्सपेक्ट करना गलत हो जाएगी कि रोबू बहुत फास्ट भी ग्रो करे और साथ में डेट भी ना उठाए, इंटरनल अक्रूवल से बढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है. तो जब तक हम फास्ट ग्रो करेंगे वो डेट का फंडा रहेगा ही. एंड एज आई सेड अर्लियर कि हम उससे डरते नहीं है. हमारा सिस्टम सेट है, हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके आएंगे, तो जो पैसे का डिमांड आएगा वो आने दो. वो पैसे का डिमांड आता है तो हमारे सिस्टम से आया हुआ है तो सही है, और अगर हम बेचेंगे तो ज्यादा पैसे का डिमांड आएगा. तो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो डेट इसमें हो रहा है, डेट आ रहा है और इन्वेंटरी पे कन्वर्ट हो रहा है, वो बिक रहा है, तब ज्यादा पैसे का डिमांड कर रहा है हमारा सिस्टम. तो आई थिंक नया डिमांड वाला सिस्टम और इन्वेंटरी रोटेशन वाला सिस्टम जब तक सही है तब तक वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट. एंड इन्वेंटरी रोटेशन डेज इट्स ऑलवेज अ टारगेट टू कीप ऑन रिड्यूसिंग इन्वेंटरी रोटेशन डेज. आई डोंट वांट टू शेयर द नंबर कि हमारा क्या इंटरनल टारगेट है, बट यस दैट इज वन ऑफ द की पैरामीटर अलॉन्ग विद सेल इवन ऑन कंपनी लेवल. क्योंकि हमें पता है कि जितना सेल्स और मार्जिन जरूरी है उतना इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है. तो मोटा मोटी रेवेन्यू विद मार्जिन एंड इन्वेंटरी डेड इन्वेंटरी इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये दो हमारे टॉप मोस्ट KPI है कंपनी लेवल पे, और हम उस पर बहुत बहुत अग्रेसिव रहते हैं.
अच्छा बढ़िया. और ये जो भी आई थिंक स्मॉल नंबर ऑफ SKUs एड किए हुए तो उसमें अपनी आई थिंक स्लो डाउन ऑफ इन्वेंटरी दैट इज इंक्रीज फ्रॉम 2.5 टू 6 पॉइंट समथिंग. सो कुड यू प्रोवाइड की ब्रेकडाउन कितना है अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड क्या स्टेप्स ले रहे हैं हम कि वो जो स्लो मूविंग इन्वेंटरी वो से लेट्स से इंडस्ट्री का जो भी एक मेट्रिक है लेट्स से 6% टू 10% हो स्लो मूविंग इन्वेंटरी वो उसी रेंज में रहे.
तो हमने 2 साल पहले जो कंपोनेंट की कैटेगरी ऐड की थी तब से ही ये मैं बोलते आ रहा हूँ कि उसपे थोड़े मार्जिन ज्यादा है, लेकिन वो कैटेगरी का साइड इफेक्ट ये है कि थोड़ी इन्वेंटरी बढ़ेगी, डेड इन्वेंटरी उससे बढ़ेगी. एंड वो माइंडसेट था कि वो इन्वेंटरी बढ़ेगी तो वी आर ओके विद दैट. आई मीन दैट वॉज इट इज नॉट आफ्टर मैथ, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव, और उसका हमारा मार्जिन में भी इम्पैक्ट हुआ. तो इट वॉज अ वन टाइम थिंग कि उसको हमको प्रोडक्ट फास्ट ऐड करने तो थोड़ा इन्वेंटरी डेड इन्वेंटरी बढ़ेगा. तो बी एश्योर्ड कि वो जो इन्वेंट्री बढ़ा हुआ दिख रहा है वो मेजोरिटी वो जो डेल्टा है बढ़ा हुआ दैट इज फ्रॉम द कंपोनेंट कैटेगरी एंड रेस्ट इज अंडर कंट्रोल. सो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट इट. और उसका सिंपल फंडा है कि जितना बिकेगा बिकेगा, 3-4-5 साल डाउन द लाइन अगर मुझे 2-4 करोड़ का रेवेन्यू 5 करोड़ का सॉरी इन्वेंट्री अगर डेड कर डिक्लेयर करके फेंकना भी पड़ गया तो भी वो कैटेगरी मुझे उतना रेवेन्यू और मार्जिन दे देगा कि 1 साल की में भी जो डेल्टा मार्जिन है उसमें वो सब कवर हो जाएगा. दैट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. सो आई थिंक वी आर ओके विद दैट, इट्स अ कैलकुलेटेड मूव.
एंड व्हाट वुड बी अ नॉर्मल इंडस्ट्री रेंज ऑफ दैट दिस इज एन ऑप्टिमल स्लो मूविंग इन्वेंटरी.
इट वैरीज वास्टली. मैं अभी नंबर देख रहा था कि जो डीजी की है वो पूरे साल में अपना इन्वेंटरी एक बार ही रोटेट करता है, इट्स आउट इन द पब्लिक. एंड और जो माउजर है वो आई थिंक 3 महीने में या 6 महीने में करता है. तो इट वैरीज वेरी वास्टली, इट्स कंपनी टू कंपनी. आई वुड नॉट लाइक टू शेयर द नंबर्स हियर, बट यस इट वैरीज, देयर इज नो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फ्लैट ऑफ.
ओके नो प्रॉब्लम. Thank you. And last question was, what proportion of short-term loans and advances relate to advance given to suppliers in FY26?
वो cycle का part है. हम generally supplier को advance देते हैं कुछ टाइम क्रेडिट मिलता है, कुछ टाइम एडवांस देना पड़ता है इंटरनेशनल सप्लायर्स को, मटेरियल ट्रांजिट में होता है, तो इट्स नॉट एडवांस सच एज ऐसे दिए हैं तो मटेरियल ट्रांजिट में होता है, तो यू कैन कंसिडर इट एज मटेरियल इन ट्रांजिट.
बट वट वुड बी द नंबर फॉर FY26?
वो नंबर कुछ भी हो, डजंट मैटर, वो कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग बेस्ड ऑन डे यू लुक इन टू इट. अब वो रिजल्ट के लिए वैसा आता है कि 31 मार्च को क्या है, बट उसको हम कंट्रोल करने का ही सोचते हैं, जो आएगा वो आएगा. हमको ऑर्डर करना है, अगर यहाँ पे इन्वेंटरी नहीं है, मेरे पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक मंगाना है तो ऑर्डर किया है, अब वो जब आएगा तब आएगा, वो साइकिल है, वो हम 31 मार्च पे उसको कंट्रोल करने का नहीं सोचते हैं. तो इट इज वॉट इट इज, बिकॉज इट जस्ट मटेरियल इन ट्रांजिट, सो आई डोंट थिंक उसका कोई सिग्निफिकेंस साइड इफेक्ट या खराब वो होने वाला है. वो नंबर बड़ा भी होगा और किसी साल छोटा भी होगा, थोड़ा कम भी दिखेगा. तो
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर.
थैंक यू.
थैंक यू. The next question is from the line of Chinmay Nema from Prescient Capital. Please go ahead.
Hi sir, hope I'm audible.
Yes, Chinmay ji, you're audible.
Sir, since you're not giving the split between B2B and B2C, could you give some directional understanding as to how much each of the segments have grown, or some color around basically how each has done individually?
इट्स अ बिट ट्रिकी वन, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम वो स्प्लिट नहीं देंगे. जो बहुत जेनरिक बात मैं बता सकता हूँ, दैट इज कि इन लॉन्ग टर्म वी ऑलवेज सी कि हमारा जो बी टू सी कस्टमर है दैट विल बी मोर ऑफ प्लेसिंग लो वैल्यू बट हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और हमारे जो बी टू बी कस्टमर है दैट विल बी प्लेसिंग हाई वैल्यू बट लेस नंबर ऑफ कस्टमर्स इन दैट सेंस. तो जो जो उसका परसेंटेज है रेवेन्यू में, जो प्रोपोर्शन है वो बी टू बी का प्रोपोर्शन धीरे 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 बढ़ता जाएगा अंटिल इन सेटल्स डाउन टू पर्टिकुलर नंबर, आई डोंट नो विच नंबर. एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स में जो ऑनलाइन है उसका प्रोपोर्शन, या बी टू सी बोल दो उसको, उसका प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा. आई मीन दैट इज द बेस्ट दैट आई कैन टेल यू.
And secondly, the increase in, if I compare working capital days to the end of last year, there's some 20 odd day increase. I mean, I think this is a repetitive question, but like, could you explain which component of the business is driving this part?
As of now, I don't have the relevant data in hand to explain this. But maybe you can reach out to us on mail, and then we'll look into the relevant data and reply you with the right data or appropriate facts.
Okay, sure. That's it from my side. Thank you.
Thank you. Ladies and gentlemen, we will take that as the last question for today. I would now like to hand the conference over to Prabal Maheshwari for closing comments. Over to you.
Thank you, Danish. On behalf of Hames Securities Limited, I would like to sincerely thank the MacForce management team for taking the time to join us today and for responding to all the queries in such a detailed and insightful manner. I would also like to thank all the participants for joining this call and for their active participation. With this, I would now like to hand it over to Danish for closing remarks.
Thank you. On behalf of Hames Securities Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining us. You may now disconnect your lines.